पूर्व निर्धारित धुनी कथन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण जर्मन लेखक, कवि, नाटककार, कलाकार गुंटा ग्रास की दुनिया में उतर रहे हैं। उनकी जिंदगी और उनका लेखन वो जर्मनी के उस उथल पुथल भरे इतिहास से मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, गुंडर ग्रास 1927 में जन्मे थे डांसिक के स्वतंत्र शहर में,
जो अब पोलैंड का ग्यांस्क है।
हाँ, ग्दांस्क। और 2015 में उनका देहांत हुआ। उन्हें अक्सर युद्ध के बाद के जर्मनी की एक तरह से कहें तो साहित्यिक अंतरात्मा माना जाता है उनकी आवाज।
हाँ,
और ये जो उनका जन्म स्थान है, उनकी मिलीजुली विरासत, मतलब जर्मन और कशुबियाई पोलिश जड़ें, ये सब उनके लेखन का केंद्र बिंदु रहा है।
सही।
और ये भी समझना जरूरी है कि उनका जो बचपन और जवानी का वक्त था वो नाजी जर्मनी के साए में गुजरा।
तो आज हम गुंटा ग्रास के जीवन पर, उनकी जो सबसे अहम रचनाएं हैं, खासकर द टिन ड्रम जो कि एक क्लासिक मानी जाती है,
बिल्कुल,
और उनकी जो थोड़ी कह सकते हैं जटिल विरासत है, उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने इतिहास के उन शहरों को, उन घटनाओं को जिन्हें अक्सर हम भूल जाते हैं, अपनी कल्पना के जरिए जिंदा कर दिया।
देखिए, ग्रास का लेखन उस जर्मनी की जमीन पर खड़ा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ना नैतिक और भौतिक, मतलब हर तरह से तबाह हो चुका था। उसे स्टूंडे नुल कहते हैं, शून्यकाल, जैसे सब कुछ शून्य हो गया हो।
सब खत्म।
हाँ, एक ऐसा दौर जब लगा कि भाई अब जर्मन संस्कृति को नाजी विचारधारा की जो कालिक लगी है उसे साफ करके बिल्कुल नए सिरे से गढ़ना होगा।
हाँ, और ये बहुत मुश्किल काम रहा होगा। इसी माहौल में जर्मनी में वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे फरगांगन हाइंस बेवेल्टिगोंग कहते हैं,
जी,
यानी अपने अतीत का सामना करना, खासकर वो नाजी दौर का जो काला सच था उसे मानना, उसकी जिम्मेदारी लेना।
आसान नहीं था बिल्कुल भी। और इसी दौर में ना ग्रुप 47 यानी ग्रुप 47 लेखकों का एक बहुत प्रभावशाली समूह भी सामने आया।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बड़े नाम थे इसमें, हाइनरिश ब्योल।
हाँ, हाइनरिश ब्योल थे, इंगबोर्ग बाखमन थी, ग्रास भी इसी ग्रुप से जुड़े। और यहीं पर जब उन्होंने द टिन ड्रम के कुछ हिस्से पढ़े ना, तो उन्हें पहली बार पहचान मिलनी शुरू हुई।
लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ग्रुप 47 के लेखक वो ज्यादातर एक संजीदा यथार्थवादी किस्म की शैली अपना रहे थे। ग्रास का अंदाज एकदम अलग था, मतलब विद्रूप, कल्पना से भरा हुआ, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाला। ऐसा क्यों था? क्या ये सिर्फ स्टाइल की बात थी?
मुझे लगता है ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं थी, शायद ये उस इतिहास की जो भयंकरता थी, जो बेतुकापन था ना, उसको पकड़ने का एक तरीका था।
अच्छा।
जो शायद सीधे सपाट यथार्थवाद से पकड़ा नहीं जा सकता था। ग्रास की शैली में एक तरह की, वो क्या कहते हैं, बारोक या रेबेलियन जैसी धूमधाम थी, जो उस दौर की तथाकथित गंभीरता के बिल्कुल उलट थी। और साथ में ये भी याद रखना होगा कि शीत युद्ध चल रहा था, जर्मनी बटा हुआ था पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, इसका भी असर था साहित्यिक माहौल पर।
और ग्रास सिर्फ मतलब कमरे में बैठकर लिख नहीं रहे थे, वो राजनीतिक तौर पर भी बहुत सक्रिय थे,
बहुत ज्यादा।
खासकर जर्मनी की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है SPD और चांसलर विली ब्रांट उनके बड़े मुखर समर्थक थे।
हाँ, उनका साफ मानना था कि भाई साहित्य राजनीति से अलग नहीं है, हो ही नहीं सकता, और लेखक की समाज के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है।
अच्छा, उनके शुरुआती जीवन को थोड़ा और करीब से देखें। डांसिंग लैंगफोर में बचपन बीता, पिता किराना व्यापारी थे।
हाँ, विलहेम ग्रास, उनके पिता जर्मन प्रोटेस्टेंट थे और माँ हेलन वो कशुबियाई कैथोलिक थी। तो ये जो मिक्स था ना, जर्मन, पोलिश, कशुबियाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इसने उनकी पहचान और उनकी सोच को बहुत गहरा बनाया।
बचपन में चर्च में वेदी सहायक, मतलब ऑल्टो बॉय भी रहे,
जी।
चित्रकला का शौक था।
हाँ, और वो शौक बाद में उनके लेखन में भी दिखता है।
और फिर किशोर अवस्था में, जैसा उस दौर में बहुत से जर्मन युवाओं के साथ हुआ, वो हिटलर यूथ में भी शामिल हुए।
जी, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध उनकी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ बना।
बिल्कुल।
पहले उन्हें सहायक सैनिक बनाया गया और फिर महज 17 साल की उम्र में 1944 के आखिर में वो वाफेन SS में भर्ती हो गए।
वाफेन SS, जो नाजी पार्टी की कुख्यात सशस्त्र शाखा थी।
हाँ, उसकी 10वीं पेंजर डिवीजन फ्रंट्सबर्ग में। और ये एक ऐसा सच था जिसे ग्रास ने, आप सोचिए, करीब 60 साल तक दुनिया से छुपा कर रखा।
वे फिर अमेरिकी सेना ने बंदी बना लिया। ये जो अनुभव था, मतलब जवानी की नासमझी में मिली भगत और फिर मोहभंग, ये उनके लेखन के लिए एक तरह का नासूर बन गया।
बिल्कुल, एक केंद्रीय घाव। और युद्ध के बाद उनका शहर डांसिग वो भी हाथ से चला गया, पोलैंड का हिस्सा बन गया।
शुरुआती दिन तो बहुत मुश्किल रहे होंगे, पेट पालने के लिए पत्थर तराशने का काम किया, खेतों में मजदूरी की।
हाँ, और यहाँ तक कि पेरिस चले गए थे, वहाँ जैज़ क्लबों में वॉशबोर्ड बजाते थे।
अच्छा।
इसी संघर्ष के बाद फिर उन्होंने डिसलडॉर्फ और बर्लिन की कला अकादमियों में मूर्तिकला और ग्राफिक्स की पढ़ाई की। और ये दिलचस्प है कि उनकी ये जो आर्ट की ट्रेनिंग थी ना, वो उनके लिखने में साफ झलकती है।
कैसे?
वो भाषा को जैसे मिट्टी या पत्थर की तरह बरतते थे, उसे तराशते थे, किरदारों को, कहानियों को जैसे कोई मूर्ति गढ़ रहे हों जिसमें कई कोण हों, कई परतें एक साथ दिखें।
तो अगर हम उनके मुख्य साहित्यिक योगदान की बात करें तो शायद सबसे अहम यही है कि उन्होंने ऐतिहासिक आघात, हिस्टोरिकल ट्रॉमा से निपटने के लिए एक नई तरह की भाषा, एक नई शैली ईजाद की।
बिल्कुल सही। उन्होंने जिसे हम मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, मतलब यथार्थ के साथ जादुई चीजों का मिल जाना और जो कठोर ऐतिहासिक सच है, इन दोनों को मिला दिया, एक अनोखा मिश्रण बनाया।
हाँ।
इसे हम उनकी अपनी खास शैली काल्पनिक इतिहासवाद या फैंटास्टिक हिस्टोरिसिज्म कह सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद द टिन ड्रम का नायक ऑस्कर मात्सेराथी है।
हाँ बिल्कुल।
एक बौना लड़का जो 3 साल की उम्र में तय कर लेता है कि अब वो और नहीं बढ़ेगा
अपनी मर्जी से।
हाँ, और उसका टिन का ड्रम बजाना या तेज चीखना कांच तोड़ सकता है।
ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था?
मकसद यही था कि इस अजीब अति यथार्थवादी कल्पना के जरिए उन ऐतिहासिक सच्चाइयों को दिखाया जाए जिन्हें शायद सीधा सीधा कहना मुश्किल था या शायद नाकाफी होता।
ऑस्कर का जो रुका हुआ विकास है ना, वो एक तरह से नाजी दौर में जर्मनी के रुके हुए नैतिक विकास का प्रतीक बन गया।
अच्छा।
और उसकी जो चीखें हैं वो समाज के दबे हुए सच और अपराध बोध की चीखें बन गईं।
कमाल है।
और उन्होंने पिकारेस्क परंपरा को भी 20वीं सदी के लिए एक नया रूप दिया।
पिकारेस्क यानी वो नायक जो समाज के किनारे पर रहता है, घूमता फिरता है और अपने अनुभवों से दुनिया का सच दिखाता है।
हाँ, ग्रास के नायक सिर्फ जगह नहीं बदलते, वो समय में भी घूमते हैं और एक बाहरी, अक्सर भरोसे के लायक न लगने वाले गवाह की तरह इतिहास को देखते हैं।
और उनकी भाषा, वो भी तो काफी अलग थी।
हाँ, उनकी शैली में घनी बुनावट मिलेगी आपको, चीजों की लंबी लंबी लिस्ट मिलेंगी, जैसे किसी बारोक पेंटिंग में हर कोना डिटेल से भरा होता है ना, वैसे।
हाँ हाँ।
ऐसा अनुभव बनाता है ना जो पाठक को कहानी से एक सुरक्षित दूरी नहीं बनाने देता, बल्कि उसे उस दुनिया में खींच लेता है।
और उनकी किताबों में अक्सर कई वर्णनकर्ता होते हैं, समय आगे पीछे जाता रहता है, दूसरी किताबों के घटनाओं के संदर्भ आते रहते हैं, इंटरटेक्सचुअलिटी जिसे कहते हैं।
हाँ।
क्या ये सब इतिहास की अपनी जो उलझन है उसको दिखाने का तरीका था?
निश्चित रूप से, क्योंकि इतिहास सीधा और सपाट तो होता नहीं, उसमें कई आवाजें होती हैं, कई नजरिए होते हैं, कई परतें होती हैं। ग्रास की शैली इसी उलझन को पकड़ती है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने लेखक की भूमिका को फिर से परिभाषित किया, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर जो कलात्मक ईमानदारी के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से हिचकिचाता नहीं।
हाँ।
स्मृति, अपराध बोध, पहचान, विस्थापन, कला और राजनीति का रिश्ता, यही सब उनके लेखन के मुख्य विषय रहे।
चलिए अब उनकी कुछ खास रचनाओं पर बात करते हैं। शुरुआत जाहिर है उनकी सबसे प्रसिद्ध डैंजिग त्रयी से करते हैं। पहली कड़ी थी दाई ब्लेस्ट ट्रोमिल यानी द टिन ड्रम, 1959।
जी,
ये उनकी मतलब माइलस्टोन रचना है, इसी ने उन्हें रातों रात दुनिया भर में पहचान दिलाई। ऑस्कर मात्सेराथ की कहानी जो नाजीवाद के उभार और अपने शहर डैंजिग के पतन का एक अजीबोगरीब अविश्वसनीय गवाह है। ये उपन्यास नाजी अपराधों में आम जर्मनों की जो मिलीभगत थी, यौनिकता, धर्म जैसे विषयों पर इतनी बेबाकी से और कई बार कहूं तो अपमानजनक तरीके से बात करता है कि ये बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा।
कितना विवादास्पद?
अंदाजा लगा सकते हैं?
और आप अंदाजा लगाइए कि कैथोलिक चर्च ने इसे बैन कर दिया, प्रतिबंधित किताबों के लिस्ट में डाल दिया, जर्मनी के कई शहरों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी।
अरे बापरे।
लेकिन इसी विवाद ने और इसकी जो असाधारण साहित्यिक ताकत थी, उसने ग्रास को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्हें 1962 में वो प्रतिष्ठित प्रिक्स फोमेंटर पुरस्कार भी मिला,
जिसमें से पहले सैमुअल बेकेट और बोर्हेस जैसे लेखक थे।
जी,
त्रयी की दूसरी कड़ी थी एक छोटा उपन्यास, कैट्स एंड माउस, कैट एंड माउस, 1961।
हाँ, ये युद्ध के दौरान डैनसिक के कुछ टीनेजर्स पर फोकस करती है, खासकर एक लड़का है योआकिम माल्के। उसका एडम्स एप्पल कंठमणि असामान्य रूप से बड़ा है और वो उसकी कमजोरी और अपराध बोध दोनों का सिंबल बन जाता है।
अच्छा,
ये हीरो वर्शिप, अपराध बोध और कैसे मासूमियत खत्म होती है, इन थीम्स की ज्यादा कसी हुई और थोड़ी उदासी सी पड़ताल है।
और त्रयी की आखिरी कड़ी थी हुंडियारे, डॉग ईयर्स, 1963।
ये एक बहुत बड़ा, मतलब एपिक नॉवल है, बहुत जटिल संरचना है, कई नरेटर हैं। ये 1920s से लेकर युद्ध के बाद के जर्मनी तक का इतिहास देखता है कई किरदारों और पीढ़ियों के जरिए। इसमें एक मजेदार चीज है, कुत्तों और इंसानों के बीच चलने वाली पैरेलल कहानी
कुत्तों की।
खासकर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है हर्रास और हिटलर का कुत्ता प्रिंस, उनकी कहानी ये नस्ल, वफादारी, विश्वासघात जैसे मुद्दों पर एक तीखा डार्क कॉमिक सटायर है।
दिलचस्प। त्रयी के बाद भी उनकी कई अहम किताबें आईं, जैसे द बट, द फ्लाउंडर 1977।
ये क्या थी?
ये भी एक बहुत महत्वाकांक्षी उपन्यास था। इसमें वो यूरोप के इतिहास को न खाने पीने और स्त्री पुरुष संबंधों के नजरिए से देखते हैं, एक तरह से उसका फेमिनिस्ट पाठ करने की कोशिश करती है।
अच्छा।
और कहानी सुनाने वाली एक बोलने वाली फ्लाउंडर मछली है जो पाषाण युग से लेकर 1970 तक पुरुषों को गाइड करती रही है। मतलब ग्रास की कल्पना की उड़ान यहाँ भी दिखती है।
जबरदस्त।
फिर 2002 में आई इम क्रैब्स गंग, क्रैब वॉक, इसने भी काफी मतलब हलचल मचाई थी शायद।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें ग्रास ने एक ऐसे विषय को छुआ जिसे जर्मनी में बहुत लंबे समय तक एक टैबू, एक वर्जित विषय माना जाता रहा था।
कौन सा विषय?
जनवरी 1945 में सोवियत पनडुब्बी ने एक जर्मन रिफ्यूजी जहाज था विल्हेम गुस्टलोफ, उसे डुबो दिया था। उसमें हजारों नागरिक मारे गए थे, ज्यादातर औरतें और बच्चे।
ओहो।
ये उपन्यास युद्ध में जर्मन नागरिकों की जो पीड़ा थी, पीढ़ियों तक उस ट्रॉमा का जो असर रहा और इतिहास को कैसे तोड़ मड़ोड़कर पेश किया जाता है, इन मुश्किल सवालों से जूझता है। इसने जर्मनी में विक्टिमहुड यानी पीड़ित होने की भावना पर एक जरूरी बहस छेड़ी थी उस वक्त।
और फिर 2006 में आई उनकी आत्मकथा बायम हॉयटन देर स्वीबल, पीलिंग द अनियन, इसने तो शायद सबसे बड़ा तूफान खड़ा किया था।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी किताब में उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने माना कि वो किशोरावस्था में वाफिन एसएस में भर्ती हुए थे। और ये खुलासा उनके 80वें जन्मदिन से ठीक पहले आया। इसने तो पूरी दुनिया में, खासकर जर्मनी में, जैसे भूचाल ला दिया।
जाहिर है
उनकी जो नैतिक छवि थी, जो उन्होंने दशकों तक जर्मनी के विवेक की आवाज बनकर बनाई थी, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। ये किताब खुद भी, जैसा कि नाम है, स्मृति, शर्म और आत्मधोखे की परतों को उधेड़ने का एक प्रयास थी। जैसे प्याज छीलते हुए आंसू आते हैं ना, वैसे ही अपनी यादों को कुरेदना भी कितना दर्दनाक होता है।
अच्छा, अगर ग्रास की तुलना उनके समय के दूसरे लेखकों से करें तो वो कहाँ नजर आते हैं?
जैसा हमने पहले कहा, ग्रुप 47 में ही उनके जो साथी थे हाइनरिश ब्योल या इंगबोर्ग बाकमन, वो युद्ध के बाद की तबाही को ज्यादा संयत, यथार्थवादी गद्दे में लिख रहे थे।
हाँ।
वहीं ग्रास अपनी कल्पनाशील, अतिरंजित और अक्सर विद्रूप शैली से उस यथार्थ के बेतुकेपन और भयावहताओं को पकड़ रहे थे। अगर दुनिया भर में देखें तो उनकी शैली की तुलना अक्सर लैटिन अमेरिकी मैजिकल रियलिज्म के लेखकों से की जाती है,
जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज।
हाँ, मार्केज, जिनकी मशहूर किताब 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ग्रास के द टिंड्रम के कुछ साल बाद आई थी। दोनों में वो इतिहास और मिथक का मिश्रण मिलता है।
और जैसा आपने बताया, उन्हें शुरुआत में ही बेकेट और बोर्हेस जैसे बड़े मॉडर्निस्ट लेखकों के साथ पुरस्कार मिला था।
जी, और बाद में सलमान रुश्दी, जॉन अर्विंग, ओरहान पामुक, मिलान कुंदेरा जैसे कई बड़े लेखकों ने ग्रास के प्रभाव को माना है। खासकर ये जो इतिहास, स्मृति और निजी अनुभव को अपनी कहानियों में पिरोने की कला है ना उनकी, उसके लिए। और उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के लेखकों के बीच एक पुल का काम भी किया, हालांकि वो खुद बाद में जर्मन एकीकरण को लेकर काफी शंकित थे।
अच्छा, उनकी विरासत की बात करें तो जर्मनी में तो वो शुरू से ही मतलब कंट्रोवर्शियल फिगर रहे।
हाँ, जैसा हमने द टिंड्रम के विवाद के बारे में सुना, रूढ़िवादी तबकों ने तो अक्सर उनकी आलोचना ही की, उनके काम को अश्लील कहा, राष्ट्र विरोधी तक कहा। जबकि जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी थे और ज्यादातर साहित्यिक आलोचक, उन्होंने उन्हें नाजी अतीत का साहस से सामना करने वाले नायक की तरह देखा।
लेकिन जर्मनी के बाहर उनकी छवि कैसी रही?
जर्मनी के बाहर, खासकर फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में जिन्होंने नाजी जर्मनी का संताप झेला था, उनके लेखन को जर्मन अपराध बोध और आत्मविश्लेषण की एक बहुत जरूरी और ईमानदार कोशिश माना गया। अमेरिका और दूसरी जगहों पर भी धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय लेखकों में गिना जाने लगा। उनकी जो कहानी कहने की तकलीक थी, उसने दुनिया भर के लेखकों को ऐतिहासिक आघात, जटिल पहचान और वो असहज सच लिखने के नए रास्ते दिखाए।
और 2006 का वो वॉफेनेसिस वाला खुलासा, उसने उनकी विरासत को कितना बदला?
उसने निश्चित रूप से उनकी विरासत को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया। बहुत लोगों के लिए ये एक बड़ा पाखंड था कि वही जो आदमी दशकों तक दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता रहा, उसने अपने ही अतीत के इतने अहम हिस्से को छुपाए रखा।
हाँ, ये सवाल तो उठता है।
बिल्कुल, लेकिन कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये खुलासा उनके लेखन की जो मनोवैज्ञानिक गहराई है ना, उसे और पुख्ता करता है।
अच्छा, कैसे?
ये दिखाता है कि अपराध बोध, शर्म, सच को छुपाने की जो प्रवृत्ति है, जिन विषयों को उन्होंने अपने उपन्यासों में इतनी बारीकी से बुना था, वो उनके लिए कितने निजी और गहरे संघर्ष का हिस्सा थे। वो सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं लिख रहे थे, कहीं ना कहीं अपने अंदर के द्वंद्व को भी लिख रहे थे।
तो आज के समय में ग्रास क्यों प्रासंगिक है, क्यों पढ़ना चाहिए उन्हें आज भी?
देखिए, ग्रास आज भी और शायद आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। स्मृति कैसे काम करती है, राष्ट्रीय पहचान कैसे घड़ी जाती है, सत्ता के सामने सच बोलने की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, ये वो सवाल हैं जिनसे ग्रास का लेखन लगातार जूझता है।
सही बात है।
आज जब हम दुनिया भर में राष्ट्रवाद का उभार देख रहे हैं, इतिहास को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिशें देख रहे हैं, तब ग्रास के लेखन हमें उन असहज सत्यों को याद रखने और याद दिलाने में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, इसकी याद दिलाता है। इसीलिए 1999 में जब उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, तो साइटेशन में कहा गया था कि उन्होंने इतिहास के भूले हुए चेहरे को उजागर किया है।
उनके कुछ कथन भी हैं जो उनकी सोच की झलक देते हैं। जैसे 1990 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, कला अडिग है और जीवन समझौतों से भरा है।
हाँ, ये कलाकार की सच्चाई के प्रति जो निष्ठा होती है और दुनियादारी के जो दबाव होते हैं, उनके बीच का वो शाश्वत तनाव दिखाता है जिससे ग्रास खुद भी जीवन भर जूझते रहे।
और 1965 में कहा, नागरिक का काम है अपना मुंह खुला रखना।
ये उनका गहरा लोकतांत्रिक विश्वास दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ बोलना, सवाल पूछना, खासकर लेखकों और बुद्धिजीवियों के लिए सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। यही उनके दशकों की राजनीतिक सक्रियता का मूल मंत्र था।
द टिन ड्रम के जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो भी बहुत यादगार हैं। माना कि मैं एक मानसिक अस्पताल का मरीज हूं, मेरा रखवाला मुझ पर नजर रखता है, वो मुझे कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता।
बिल्कुल, ये तुरंत पाठक को एक ऐसे नैरेटर के हवाले कर देता है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, और वो पागलपन और यथार्थ के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। ये ग्रास की शैली की पहचान है।
और अपने नोबेल भाषण में उन्होंने कहा था, किताबें और सिगरेट के टुकड़े ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, किताबें आपस में बातचीत से अपना विज्ञापन करती हैं।
ये साहित्य के असली मूल्य पर उनके विश्वास को दिखाता है कि किताबों की कीमत बाजार तय नहीं करता, बल्कि पाठक और समय तय करते हैं।
एक और दिलचस्प बात, बाद के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे हमेशा सुंदर वाक्यों पर संदेह रहा है।
हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए सच्चाई और ईमानदारी भाषा की ऊपरी सजावट से ज्यादा जरूरी थी। शैली जो थी वो कहने वाली बात के लिए थी, खुद अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं थी।
जाते जाते 2012 में उनकी एक कविता थी, व्हाट मस्ट बी सेड, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में इसराइल की नीतियों की आलोचना की थी। इस पर उन्हें इसराइल में परसोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया था।
जी, ये दिखाता है कि वो आखिर तक मतलब विवादास्पद भी बने रहे और राजनीतिक रूप से एकदम मुखर भी चुप रहने वालों में से नहीं थे।
सही है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ग्रास की जिंदगी और उनका लेखन, वो अपराध बोध, स्मृति, सच को कहने और छुपाने की जो जद्दोजहद होती है और अंत में स्वीकारोक्ति तक पहुंचने की जो यात्रा होती है, उसका एक लंबा, जटिल और अक्सर दर्दनाक दस्तावेज है।
तो यहाँ हमारे लिए सोचने की बात ये है कि हम चाहे एक समाज के तौर पर हों या अपने निजी जीवन में, अपने इतिहास के, अपने जीवन के मुश्किल, असहज और शर्मिंदा करने वाले सत्यों का सामना कैसे करते हैं। क्या कल्पना, कहानी, कला, क्या ये हमें उन सच्चाइयों तक ले जा सकती हैं जिनसे हम शायद सीधे तौर पर नजरें चुराना चाहते हैं?
ग्रास का काम शायद यही सुझाता है कि कला अपनी तमाम विद्रूपता और कल्पनाशीलता के बावजूद, या शायद उसी की वजह से, हमें उन अंधेरे कोनों में झांकने की हिम्मत दे सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है जहां जाने से हम अक्सर डरते हैं।
पूर्व निर्धारित ध्वनि कथन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।